اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، کیا ہے تیری حقیقت جو گمنام ہے، تجھ پہ خود کو چھپانے کا الزام ہے، دنیا بنائی کیوں مقصد بتا، تم نے دنیا بنائی کیوں مقصد بتا، روحیں اس میں بسائی کیوں مطلب جتا، روحیں اس میں بسائی کیوں مطلب جتا، تیرے جلوہ سے روشن زمین آسمان، کیوں کسی کو نظر تو نہ آتا یہاں، تیری پردہ نشینی کا انجام ہے، ڈھونڈتا آج بھی تجھ کو انسان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، دھرم مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، سب کے بھگوان اپنے ہی اپنے جہاں، نہ سمجھ تجھ کو سمجھے نہ لڑتے یہاں، تو سمجھدار ہو کے بھی انجان ہے بدی کرتے انسان، تو بدنام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، تو نے جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، کھیل کیسا گجب تھا غضب ڈھا دیا، نیکیوں کو بدی سے ملا جو دیا، لینا کب تک تمہیں سب کا امتحان ہے، اب سبھی کے دلوں میں ارمان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا کام ہے، کیا نام ہے، ہاں کیا کام ہے، اے خدا
شانتی. हमारे बीच आदरणीय उषा दीदी जी विराजमान हैं। आप सभी महान आत्माएं जोरदार करतल ध्वनि से, हम और भी नाश्ता कर लिया ना, तो और थोड़ा एनर्जी से ताली बजाए देखें। हमारी दीदी हमारे बीच आए हैं। आदरणीय उषा दीदी को कौन नहीं जानता, आप सभी ने देखा होगा पीस ऑफ माइंड में, जिसने देखा है दीदी को चैनल्स में सभी ने देखा है। वैसे फिर भी मैं शॉर्ट में दीदी जी का परिचय दूंगी। वैसे आप सब दीदी को जानते ही है। 1980 में दीदी ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। आप वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका हैं, साथ साथ पॉलिटिशियन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है और मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं। 80 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया। 92 तक आप मुंबई हैदराबाद के सेंटर्स पर आप अपनी सेवाएं देते रहे। तत्पश्चात 92 के बाद आप मुख्यालय में ही निवास करते हैं। यहाँ होने वाले सभी कार्यक्रमों में आपके लेक्चर्स रहते हैं। वैसे जाम्बिया में आपका जन्म हुआ, फिर वहाँ से भारत आए। तत्पश्चात आप ईश्वरीय सेवा से जुड़े और संपूर्ण रूप से आप देखते हैं कितनी सुंदर सेवाएं दीदी करते हैं। पीस ऑफ माइंड, हमारी जो निजी चैनल्स है अवेकनिंग, सभी चैनल्स में दीदी जी के लेक्चर्स आते रहते हैं। आप सब ने जरूर लाभ लिया होगा। देश विदेश में भी दीदी ने जाकर ईश्वरीय संदेश पहुंचाया है। हाल ही में संत सम्मेलन भी था, दीदी ने सारा ऑर्गेनाइज भी किया, बहुत सुंदर प्रोग्राम भी संतों का हुआ। फिर भी दीदी को रिक्वेस्ट किया कि यहाँ तो आना ही है, तो दीदी ने टाइम दिया और दीदी आ गए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीदी का। और दीदी ने किताबें भी लिखी हैं और भगवत गीता, रामायण, महाभारत पर भी आध्यात्मिक रहस्य, इन पुराणों का भी हम बताते हैं कैसे दीदी के द्वारा हमें सिग्निफिकेंस जानने को मिलता है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। और आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त है, हॉल ऑफ फेम अवार्ड, मॉरल अवार्ड फिलीपींस में आपको, थाईलैंड में भी मिला, तो बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं। तो अभी हम दीदी जी से अनुरोध करते हैं आप परमात्मा का परिचय आप सबके समक्ष रखें। आदरणीय उषा दीदी जी, मैं आपके लिए कहना चाहूँगी, सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए, आदरणीय उषा दीदी के द्वारा परमात्मा का परिचय मिल जाए तो और क्या चाहिए, तो और क्या चाहिए। सुनेंगे दीदी के द्वारा परमात्मा का दिव्य ज्ञान, जो खुद खुदा ने अपना परिचय दिया है। आज हम उषा दीदी के माध्यम से खुदा का परिचय, परमात्मा का परिचय प्राप्त करेंगे। और एक अनाउंसमेंट है, जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, कृपया आप अपनी क्लास के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँचेंगे। और जो शिविर में आए हैं, जिन्होंने अभी तक सौगात नहीं ली है, कल क्लास के बाद आपको यहाँ पर ही सौगात मिलेगा, इसलिए कोई मिस नहीं करेंगे। अभी मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय उषा दीदी से, परमात्मा का परिचय हम सुनेंगे आदरणीय उषा दीदी के द्वारा।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राजयोग शिविर के अंतर्गत यह आज आपका दूसरा सत्र है। सुबह आपने आत्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त किया, और जहां तक आत्मा की बात आती है, वहां तक तो फिर भी हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, ये मानता है कि हाँ, एक चैतन्य शक्ति आत्मा है जो इस शरीर में विराजमान है, जो सारे इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही है। चाहे किसी ने उसको आत्मा कहा, सोल कहा, शक्ति कहा, रूह कहा, या एक एनर्जी कहा, इशारा उस चैतन्य शक्ति की ओर है। परंतु जहां परमात्मा का परिचय आता है, वहां आज दुनिया में अनेक मत मतांतर है, इतनी सारी मतें हैं ईश्वर के बारे में, कि शायद आज इंसान बहुत कंफ्यूज स्टेज में हो गया है कि आखिर भी वो परमात्मा कौन है। जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी गांव में चला जाए और वो अपना परिचय न दे, लोग उसकी पहरवाइश को देख करके, उसके बोलने के ढंग को लेकर के या चलने के ढंग को लेकर उसके लिए अनुमान लगाते हैं, यहां से आया होगा, ऐसा होगा, अनेक प्रकार के अनुमान लगाते हैं। परंतु जब वो अपना परिचय खुद देता है तब लोग उसके बारे में जानते हैं। ठीक इसी तरह संसार में भी समय प्रति समय लोगों ने आकर के ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ कहा। हो सकता ही उनका एक अनुमान हो, शायद ईश्वर ऐसा हो सकता है, शायद ईश्वर ऐसा हो सकता है, लेकिन सत्य परिचय किसी के पास नहीं। तभी तो इतनी मतमतांतरे हैं। एक बार एक बहन मेरे सामने आकर कहने लगी कि उसका बेटा 16-17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि बेटे हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा माँ से कहता है भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं, और अगर ये सारे भगवान हैं तो इन सब का हेड कौन है। परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ये सारे भगवानों का हेड कौन है। वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है, और इसलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, कोई स्पेशल ओकेजन होता है या कोई त्योहार होता है तो वो बच्चा मना कर देता है, यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज्ड हो जाता हूं, मैं अपने मन को कहां एकाग्र करूं, किसमें एकाग्र करूं। और इसलिए वो बच्चा कहता है मंदिर जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा मन तो लगता नहीं, एक दुविधा में रहता है। इसलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है। वो माँ को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है, क्योंकि शायद मैं उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती हूं। ये उस माँ का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज के युग में कई बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं, सत्य जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन सत्य ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। इसीलिए गीत भी बहुत सुंदर सुना, एक खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। कितने सारे प्रश्न थे इस गीत में, और ये सारे प्रश्न आज के मनुष्य के मन में भी है। मन में एक दुविधा बनी रहती है जिसको हम पूछ रहे हैं, क्या वही सत्य ईश्वर है, क्या उन तक मेरी प्रार्थना पहुंच रही होगी, वो मेरे मन की बात को सुन रहा होगा। अनेक प्रश्न आज के मनुष्य के मन में भी है, और ईश्वर के लिए कहा जाता है कि ईश्वर सत्य है, तो सत्य तो एक होना चाहिए। 10 बातें हमारे सामने और हम कहे सभी सत्य है, इम्पॉसिबल। सत्य एक होता है। तो ईश्वर के बारे में इतनी सारी मतें जो है, उसमें से सत्य क्या है? एक बार एक कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है, हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था, नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा, हम सो सो हम। तीसरे कॉलम में लिखा था, ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था, ईश्वर कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है। पांचवे कॉलम में लिखा था, वो निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था, जितने भी इष्ट देवी देवता है, सब भगवान है। समय समय पर भगवान ने भिन्न भिन्न अवतार धारण किए, इस संसार में आए। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, देयर इज नथिंग लाइक गॉड, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान है तो कैन यू प्रूव इट, क्या आप उसको सिद्ध कर सकते हो, उसका प्रमाण दे सकते हो? अब जो व्यक्ति ये सारी मतें पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, सारी कॉलम में पढ़ रहा था, सारा पढ़ने के बाद कितना कंफ्यूज्ड हो गया होगा कि आखिर इसमें से सत्य क्या है। भावार्थ ये कि ये सारी मतें भी एक दूसरे से कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को परमात्मा कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे, साकार को कहे या है ही नहीं कहे। इसलिए आवश्यकता है कि सत्य को समझने की, जानने की और फिर उसको स्वीकार करें। ये नहीं जिसने जो आया जो कहा उसको हमने मान लिया, ये तो अंधश्रद्धा हो जाएगी। तो आखिर ईश्वर कौन है, उसको पहचानने की कोई कसौटी? आज हम आपको मत नहीं देंगे, आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो, सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। वो कसौटी है पांच बातें। सबसे पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, गॉड इज वन। जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे परमेश्वर। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक, उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। जो अजन्मा है, अकाल मूरत है, जिसको काल कभी नहीं खा सकता, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु अवश्य है। परमात्मा जन्मा, अकाल मूरत है। तो जो सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम अथॉरिटी, जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी है ही नहीं, उसको कहेंगे परमेश्वर। तीसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व चक्रों से परे हो। मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र, परमात्मा उससे भी परे है, अजन्मा है, अकाल मूरत है। जिसने जन्म लिया उसने देह धारण किया, और देह है तो देह के संबंध है। परमात्मा ने जन्म ही नहीं लिया, जन्मा है तो अव्यक्त मूरत है, न देह है न देह के संबंध है, अव्यक्त, व्यक्त से परे परे। दो मिनट परमात्मा स्मृति में बैठते हैं। तो तीसरा है कि वो सभी चक्रों से परे हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं, देह और देह के संबंधों के चक्र से परे हैं। अब जिसने संसार में देह लिया उसने कर्म किया, कर्म किया तो फल भोगना पड़ता है। परमात्मा कर्ता भोगता है, जो कर्म और कर्म के फल के चक्र से भी परे है। कर्म किया तो मनुष्य ने या तो वो कर्म पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा, तो पाप और पुण्य के चक्र में भी हम आते हैं, परमात्मा इस चक्र से भी परे हैं। और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता है या दुख मिलता है। तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते हैं, परमात्मा सुख दुख के चक्र से भी परे हैं। जिसके लिए कहा वो दुख हर कर सुख देने वाला हरि है। तो जो इन पांचों चक्र से मुक्त है, न्यारे, उसको कहेंगे परमेश्वर। चौथी बात, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी जिसको कहा जाता, तीनों कालों का ज्ञान जिसके पास है। परमात्मा को त्रिनेत्री भी कहा जाता है, मनुष्य को ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं। और त्रिमूर्ति भी कहा जाता है या त्रिदेव भी कहा जाता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, उसको कहेंगे परमेश्वर। तो ये पांचों बातें जिसके साथ लगे, ये तीन की बात जो लक्षी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति या त्रिदेव, उसको कहेंगे परमेश्वर। और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए कहा गया धरती का कागज बनाओ, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ और स्वयं साक्षात सरस्वती बैठकर उसकी महिमा लिखे तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा। तो ये पांचों बातें हैं कसौटी, जिसके साथ लगे उसको कहेंगे परमेश्वर। सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अब अगर एक एक मत को उठाकर देखे तो ये पांचों बातें किसके साथ लगती है। जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? करेंगे? हाँ? नहीं करेंगे। क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे। किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, रचना है कहना सत्य है। अगर रचना है कहना सत्य है तो प्रकृति को परमेश्वर मानना यह ज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस। जो हमने मान लिया कि प्रकृति परमेश्वर है, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? आगे बढ़े। दूसरी बात, जब हम कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम ही परमेश्वर है, आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये क्यों गाया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये क्यों गाया हमने, तुम मात पिता हम बालक तेरे, है ना? अब सत्य क्या है? आत्मा ही परमात्मा है या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना ठीक है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? संतान है कहना ठीक है ना? ब्रदरहुड कहा गया है, फादरहुड तो नहीं कहेंगे, सब अगर परमात्मा हो, सब आत्मा ही परमात्मा हो तो फादरहुड हो जाए। भाई भाई कहना तो ठीक है, लेकिन हर एक आत्मा परमात्मा है। कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो हम प्राप्त कर ले मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, है ना, कोई डिग्री नहीं है। और इसीलिए मनुष्य ने जैसा कर्म किया वैसा टाइटल जरूर मिला। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने पाप कर्म किया तो कहेंगे पापात्मा है, किसी ने महान काम किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। तो देवात्माएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, पापात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन। और ये सब भी आत्मा है, परमात्मा कोई नहीं। पुण्य आत्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा महान परमात्मा भी नहीं कहा, धर्म आत्मा धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा। भारत में देवताएं भी कितने हैं? 33 कोटि, 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये सब देव आत्माएं हैं, देव परमात्मा कोई नहीं है। तीसरा, कई बार कई लोग क्या कहते हैं, जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ा परमात्मा है, उसके टुकड़े 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 हो गए और हम सब आत्माएं बन गए और अंत में सभी उस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। देखो एग्जाम्पल दे तो बराबर का तो दे। सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो मैटर है, मैटर मैटर में समा सकता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है, एनर्जी है। और एनर्जी के लिए कहा जाता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एग्जाम्पल तो बराबर का दो। मैटर और एनर्जी दोनों को कंपेयर कैसे किया जा सकता है? कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। तब कहा सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, तो बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा, सागर बन गया। लेकिन आत्मा और परमात्मा के लिए यही कहा गया है गीता में, भगवान उवाच दूसरे अध्याय में, आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। अजर जर्जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, अविनाशी जिसके अस्तित्व का कभी विनाश नहीं होता है। इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो परमात्मा में मिलेगी कैसे? मिल जाएंगी तो उसका अस्तित्व समाप्त तो हो गया, तो मिल ही नहीं सकती है ना, उसके टुकड़े हो सकते हैं। परमात्मा का अस्तित्व अपना है, आत्मा का अस्तित्व अपना है, दोनों अजर अमर अविनाशी है। तब कई बार कई लोग क्या कहते हैं, जैसे पुत्र पिता का अंश है वैसे आत्मा भी परमात्मा का अंश है। ये कहां तक सत्य है? पुत्र पिता का अंश है, अगेन इट इज मैटर, है ना। पुत्र माना 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, वो पिता का अंश है और अंत में वो 5 तत्वों में मिल जाता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। अगेन ये एग्जाम्पल बैठता नहीं है। लोगों ने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देख करके हमें कन्विंस कर दिया यहां हम ही परमात्मा है और इसीलिए कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र है, पाप भी कर सकते हैं, पुण्य भी कर सकते हैं, जो आए हमारी इच्छा है कर सकते, हम परमात्मा है। इसलिए आज मनुष्य को अभिमान आ गया है, परमात्मा होने का अभिमान, तभी आज मनुष्य इतना गलत काम करता जा रहा है, क्योंकि वो डर समाप्त हो गया, कर्म की गुह्य गति को समझा ही नहीं, और क्या कह दिया, आत्मा निर्लेप है, उसको कोई लेप छेप नहीं लगता है, इसलिए आप कोई भी कर्म करो कुछ भी आपको नहीं होगा। कितना बड़ा अज्ञान है ये, कितना बड़ा अज्ञान है। तो सत्य क्या है, आत्मा स्व परमात्मा है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है, क्या कहता है? संतान है कहना सत्य है, आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? अंश नहीं है, टुकड़े नहीं है, हम उसके संतान है, वंश है। क्लियर, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, अब ये कहां तक सत्य है? अज्ञानता के कारण हमने दो दो बातें कही, एक तो कहा ब्रह्म ईश्वर है, दूसरी और कहते पार ब्रह्म परमेश्वर, पार, पांच तत्वों की दुनिया से जो पार है, ब्रह्म महत्त्व, उस ब्रह्म महत्त्व में निवास करने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। अब आपका विवेक किसको सत्य मानता है, ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है, तो इसका मतलब ब्रह्म ही ईश्वर है कहना अज्ञान है। ब्रह्म महत तत्व है, परमात्मा तत्व नहीं है, तत्व में निवास करने वाला तथ्य है, He is the essence, staying in the element, ब्रह्म महतत्व, ये element जो है उसमें निवास करने वाला तथ्य, essence है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। चौथी बात, जब हम कहते कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है, हरेक में ईश्वर है, तेरे में भी ईश्वर, मेरे में भी ईश्वर, अब ये कहां तक सत्य है? क्या सचमुच परमात्मा सब में है? कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान हो सकता है? कण कण में माना तो कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है, यही कहेंगे? हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऊंचे से ऊंची हस्ती, कहां हमने उसको सब में कण कण में कह दिया? आज कोई हमें कह दे के फलाना व्यक्ति तो जानवर जैसा है, तो हमें कितना इंसल्ट महसूस होता है, उसने मेरे को जानवर जैसा कहा। और भगवान को हम कहते हैं कण कण में, माना जानवर में भी है, तो कूड़े कचरे में भी है, गटर में भी है, क्या ये भगवान का इंसल्ट नहीं है? क्या आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है? अगर भगवान सब में है, तेरे में भी ईश्वर, मेरे में भी ईश्वर, तो एक व्यक्ति जब दूसरे का खून करता है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है, तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठ के क्या कर रहा था? क्या परमात्मा के पास इतनी शक्ति नहीं है एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? सर्वशक्तिमान। आज देखो घर में अगर बच्चे होते हैं, बच्चे खिलौने से खेल रहे होते हैं, माँ बाप सामने बैठे हैं और किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए बच्चों का, लड़ने लगे, मारपीट करने लगे, तो आप देखते रहेंगे या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। एक शारीरिक माता पिता भी बच्चों को आपस में लड़ता नहीं देख सकता है तो वो तो परमात्मा है, दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर। वो अगर सब में विराजमान है और मनुष्य इतना गलत काम कर रहे हैं तो क्या परमात्मा उसको रोकता नहीं है? इतनी भी ताकत नहीं है? देखो उसकी महिमा में भी गाया जाता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवन। जिसका नाम इतना ऊंचा है, काम इतना ऊंचा है, उसका धाम भी इतना ही ऊंचा है। इसीलिए तो मनुष्य अगर कोई बात किसी को पूछता है, उसको मालूम नहीं होता है तो क्या कहता है? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, यही कहते हैं ना। कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, अनजानेपन में भी यही निकला ऊपर वाला जाने, तो ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला कौन है? जो कण कण में व्यापक है वो कौन है और ऊपर वाला कौन है? क्या वो दोनों एक ही है या अलग है? परमात्मा ने गीता के चौथे अध्याय में जब ये वायदा दिया मनुष्य को, अर्जुन को, यदा यदा ही धर्मस्य, भावार्थ जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है, मनुष्य का हृदय परमात्मा के प्रति ग्लानी से भर जाता है, तब तब, जब जब, तब तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ। किस लिए? अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। अगर ये भगवान का वायदा है गीता में, तो अधर्म के समय पर वो आएगा। अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म होना ही नहीं चाहिए। अगर वो यही है तो फिर कौन आएगा अधर्म का नाश करने के लिए? कई सारे सवाल मन के अंदर खड़े हो जाते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, सर्वव्यापी भगवान नहीं है, सर्वव्यापी शैतान है। आज हर एक इंसान के अंदर क्या नजर आता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, ये बुराइयां नजर आए तो सर्वव्यापी ईश्वर है या बुराइयां है? बुराइयां है सर्वव्यापी। जहां देखो वहां बुराई ही बुराई है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी होता तो सद्गुण ही दिखाई देने चाहिए। वो तो गुणों में अनंत है, वो गुण कहां दिखाई देते हैं? आज एक परिवार में भी मनुष्य मनुष्य के प्रति स्वार्थ के बात से, मतलब से ही तो एक दूसरे के कार्य करता है, मतलब से करते हैं ना। आज एक छोटे बच्चे को आप बहुत प्यार करना शुरू करो, बेटा तू तो बहुत अच्छा है, बहुत ये है, आज्ञाकारी है, मेरा लाडला है, इतना बोलना। वो बच्चा भी आपको कहेगा मतलब की बात करो, ये मस्का पॉलिश मारने की जरूरत नहीं है, कहेगा कि नहीं कहेगा? तभी तो दुनिया को के लिए कहा जाता मतलब की दुनिया है, स्वार्थ के सारे रिश्ते हैं। तो परमात्मा अगर कण कण में है, हर एक में है, तो सद्गुण दिखाई देने चाहिए या अवगुण दिखाई देने चाहिए? जहां देखो स्वार्थ ही नजर आता है, बुराइयां ही नजर आती हैं, तो सर्वव्यापी कौन हुआ? शैतान हुआ या भगवान हुआ? लेकिन मनुष्य कितना उस शैतान के भी वश है। शैतान ने ऐसा अज्ञानता का पर्दा डाल दिया जो आज वो शैतान कह रहा है मैं ये भगवान, मैं सर्वव्यापी हूं, तो स्वीकार कर, मनुष्य ने स्वीकार कर लिया उस शैतान को भगवान के रूप में। ये हाल है आज दुनिया का, देखो है कि नहीं। तब कई बार कई लोग पूछते हैं कि बहन जी शास्त्र में गीता में भी तो कहा है कि मैं कण कण में हूं, मैं सब में व्यापक हूं, तो क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है कि शास्त्र की बात को हमने समझने में गलती कर दी हो। ये तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन शास्त्र को समझा ही नहीं है। शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और ऋषि मुनियों ने जब शास्त्र लिखे तो कहा जाता है कि उस समय के ऋषि मुनि बड़े सिद्ध होते थे, वो समय को देख सकते थे कि आने वाला कलयुग काल कैसा होगा, कली काल कैसा होगा, मनुष्य कितना घोर पाप कर्म करेगा। तब उन्होंने ये बात शास्त्र में लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप कर रहा है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर रहे और वो पाप कर्म न करे। इसलिए ये बात उन्होंने शास्त्र में बड़ी कल्याण के भावना से लिखी। जिस तरह आज एक छोटा बच्चा होता है, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है। वो सोचता है जैसे घर के सारे लोग बाहर जाए, मैं भी बाहर जाऊं। उस समय माँ को बहुत ध्यान देना पड़ता है, कहीं रास्ते पर न निकल जाए, तो माँ क्या करेगी? माँ उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाएगी, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी देख बाहर गए ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। ये नहीं कह सकते हम माँ ने झूठ क्यों बोला, क्योंकि माँ के लिए बच्चे की सुरक्षा प्रथम है। इसलिए वो बाहर न निकल जाए, इस कल्याण की भावना से उसने ये बात कही, एक डर बिठाया। और बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता भी है, जैसे ही कुत्ते या गाय को देखेगा क्या करेगा? वापस अंदर आ जाएगा और बड़ा खुश होता है, आई एम सेफ बताता है, मैं सुरक्षित हूं, मैं बाहर नहीं गया, है ना। लेकिन वही बच्चा 10-12 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ कितनी भोली है, इतना भी नहीं जानती है, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला है क्या? और हंसते हुए बाहर निकल जाता है, बाहर जाकर कुत्ते के साथ खेलता है और अपनी माँ को कहता है देख कहाँ ले जाता है मुझे, है ना। उठाकर उसको घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं ही लेके आया उसको। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था बचपन में, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह ऋषि मुनियों ने बड़ी शुद्ध भावना के साथ ये बात शास्त्र में लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य पाप कर्म न करे। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, इसलिए कोई उसको कहता भी है अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है? अरे भगवान तो सर्वशक्तिमान है ना, वो अगर मुझे देखता है तो देखता क्यों है, वो छुड़ाए ना, वो तो छुड़ा सकता है मुझे? वो देखता क्यों है? वो डर भी नहीं रहा और पाप करता ही चला गया, पाप करता ही चला गया। तो शास्त्रों में जिस भावना से उस बात को लिखा था उसको लेकर के तो चल रहा है, लेकिन कर्म गलत कर रहा है ना। कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां शास्त्र को नहीं मानती है कि भगवान सर्वव्यापी शास्त्र में लिखा है उसको नहीं मानती है। आप मानते हो? अगर आप मानते होते तो पाप नहीं करते थे? मानते होते शास्त्रों की बात तो पाप नहीं करते थे ना? हम तो नहीं करते हैं। समझ लिया कि शास्त्र में जो बातें लिखी है वो किस भावना से लिखी है, और इसलिए काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ करके हमने तो पुरुषार्थ करना शुरू किया। हम तो मानते हैं, लेकिन अगर आप शास्त्र की बात मानते होते तो पाप करते थे? तो कौन शास्त्र को नहीं मानते हैं, ब्रह्मा कुमारियां या दुनिया? कौन नहीं मानते हैं? दुनिया नहीं मानती है। और खुद के ऊपर अज्ञानता का पर्दा है, किसी ने कह दिया ब्रह्मा कुमारी शास्त्र को नहीं मानते हैं तो कहना शुरू कर दिया। अरे ब्रह्मा कुमारियां तो मानती है शास्त्र को, जानती भी है, मानती भी है, चलती भी है, पाप न करने की प्रेरणा देती है, न कि शास्त्र में लिखा है भगवान कण कण में है, भगवान हमें देख रहा है, बुरा कर्म करते तो भी देख रहा है और फिर पाप भी करते चलो और भगवान की महिमा। तो शास्त्र को कौन नहीं मानता है बताओ? ब्रह्मा कुमारी नहीं मानती है या दुनिया नहीं मानती है? इसीलिए सर्वव्यापकता की बात हम तो मानते हैं, एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। हम ये नहीं मानते कि ये माइक में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा इसलिए बैठ के उसकी पूजा करूं, ये कुर्सी में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं। ये अंधश्रद्धा है, ये अंधश्रद्धा है। हम ये मानते हैं कि ये सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। आज एक मान लो कि आपका बच्चा कहीं विदेश गया और विदेश से वो फोन करता है और आपसे पूछता है, माँ से पूछता है, माँ तुम मुझे याद करती हो? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? अरे बेटे तुझे भूलते ही कब है, तू तो हमारे दिल में है, तू तो हमारे दिल में बैठा है, तुझे भूलते ही कब है? लेकिन दिल में बैठा है उसका मतलब फिजिकली वो बच्चा कोई आपके दिल में बैठा है क्या? उसकी याद आपके दिल में है, आपके मन में है। ठीक इसी तरह ईश्वर सर्वव्यापी है, इस भावना को लेकर चलो, कभी कोई पाप कर्म नहीं होगा। लेकिन सिद्धांतिक रूप से मान लेना कि सब में परमात्मा है इसलिए मैं बैठकर सबकी पूजा करना शुरू करूं, ये अंधश्रद्धा है। इस भावना को लेकर चलो, जैसे मीराबाई ने कहा, उस भावना के कारण उसके मनस पटल पर श्री कृष्ण की तस्वीर, श्री कृष्ण के प्रतिमा इतनी अंकित थी, जो जहां देखती थी उसी प्रतिमा उसको वहां दिखाई देती थी। उस भावना के कारण उसने कहा, जहां देखूं वहां तू ही तू है, कहां तू नहीं है। तो ये भावना है, प्रेम है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सब में वो कृष्ण बैठा हुआ था, नहीं। इस भावना को लेकर चलो, इसको हम भी मानते हैं, लेकिन अंधश्रद्धावश नहीं चलो, ये ब्रह्मा कुमारियां कहती है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? आगे बढ़े। पांचवी बात, जब हम कहते निराकार है, न नाम है न रूप है नाकार है, आज संसार में नाम रूप आकार बिना कोई चीज है? कोई चीज नहीं है। हवा जो दिखाई नहीं देती है उसका नाम भी है। और अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना है उसमें तेज हवा दिखानी है तो दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। कि चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है, चक्रवात है। और शांत प्रकृति दिखाना है, हवा चल ही नहीं रही है, तो पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखाकर बता देता है कि जैसे हवा चल ही नहीं रही है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी अगर एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? तो क्या स्वयं परमात्मा नाम रूप आकार बिना हो सकता है? उसका भी नाम होगा, उसका भी स्वरूप होगा। निराकार अर्थात जिसकी आकृति मनुष्य सदृश नहीं है, उस अर्थ में कहा निराकार है, लेकिन उसका स्वरूप तो होगा। जिस तरह ईश्वर की महिमा में गाते वो निर्गुण है, निर्गुण का भी शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो जिसमें कोई गुण नाही, तो ईश्वर तो गुणों में अनंत है, फिर उसको निर्गुण क्यों कहा? तो प्रकृति के तीन गुण जो है, सात्विक राजसिक तामसिक, उन गुणों के प्रभाव से वो परे है, इसलिए कहा निर्गुण। प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से वह न्यारे है, लेकिन वो गुणों में अनंत है। ठीक इसी तरह परमात्मा निराकार माना जिसकी आकृति मनुष्य सदृश नहीं है, लेकिन उसका अपना स्वरूप तो है, वो कौन सा है? तो जिस तरह पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? प्रकाश पुंज, ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाते हैं। इसी यादगार में के जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसके यादगार में वो ज्योत जलाई। अर्थात आत्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप है, तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योति स्वरूप है, प्रकाश पुंज है। तभी तो गीता में अर्जुन ने कहा अनंत प्रकाशमान, हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप। वो परमात्मा का दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार उसने किया और कहा बस करो प्रभु, मैं ये तेज सह नहीं पा रहा हूं, इतना तेजोमय था, सूर्य के समान तेजोमय स्वरूप। लेकिन ऐसे धधकने वाला नहीं जो जला दे। तो दूसरे ही श्लोक में कहा नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह शीतल हूं, सूर्य के समान हूं तेजोमय, लेकिन नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह शीतल हूं। जिस शीतलता को समा करके आत्मा भी शीतलता का अनुभव करे, ऐसा परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। तो निराकार माना जिसकी साकार में कोई आकृति नहीं लेकिन ज्योति स्वरूप, जिसकी पूजा भारत में ज्योतिर्लिंगम के रूप में किया गया। ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति, ज्योति की आकृति, ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी जिस पर अपनी भावनाओं को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ये जो आकृति दिया वो परमात्मा नहीं है, कौन है? तो कहा ज्योतिर्लिंगम, जो ज्योति स्वरूप है वो परमात्मा के प्रति हम अपनी भावनाओं को अर्पित करते हैं। जिसको कहा देव देव महादेव, और इसीलिए भारत भर में द्वादश ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान है, जहां इतनी ऊर्जा महसूस होती है। 12 ज्योतिर्लिंगम, हर ज्योतिर्लिंगम का अपना महत्व है, महान तीर्थ स्थान है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, तो साउथ में जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, तो ईस्ट में जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, तो वेस्ट में जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। तो परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो, ज्योतिर्लिंगम का मंदिर न हो। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाओ श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता जाओ काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी, तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तो तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय की पूजा मुरुगन की पूजा मिलेगी, तो राजस्थान में जाओ राम देवराजी की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में। भारत का जितने भी शिव के मंदिर है, शिवालय जिसको कहा, शिवालय, वो सारे शिवालयों के नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक है, और उसके नाम के एंडिंग में नाथ और ईश्वर आता है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सारे शिव के मंदिर है। जो सर्व का नाथ और ईश्वर है वो एक ही है ना? इसीलिए उसको कहा देवताओं के भी जो आराध्य रहे। श्री कृष्ण के आराध्य कौन थे? शिव। तो श्री राम के भी आराध्य कौन थे? शिव। तभी तो साउथ में जब पहुंचे तो रामेश्वरम में पहले शिव की पूजा की, रावण से युद्ध करने से पूर्व। वृंदावन चले जाओ तो वहां पर श्री कृष्ण ने शिव की पूजा की गोपों के साथ मिलकर, इसलिए कहा गोपेश्वरम, गोपों के साथ मिलकर के जिसने पूजा की। जितने भी देवियां हैं, ये देवियां कौन है? तो कहते शिव शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। इसलिए ये सारी देवियां जितने भी भारत में 51 पीठ जो है, जितनी भी देवियां हैं, कोई देवियों को शादीशुदा नहीं दिखाते हैं, सारी शक्ति स्वरूपा है, कुंवारी है, कुंवारी कन्याएं जिसको कहा देवी है। इसीलिए घरों में भी कुंवारी कन्याओं का पूजन होता है, शादी होने के बाद वो सबकी पूजा करने लगती है ना? तो कुंवारी कन्याओं की पूजा क्यों होती है? क्योंकि साक्षात शिव शक्ति कहते हैं उसको। भारत में कितनी ऊंची नजर है, लेकिन आज वो दृष्टि भी समाप्त हो गई, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं, घरों में भी नहीं सिखाते हैं कि ये कुंवारी कन्याएं जो है ये शिव शक्ति स्वरूपा है, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां, और ही उसको बेटियों को खत्म करने के लिए कितने तरीके अपनाते हैं। तभी तो बेटी बचाओ प्रोग्राम करना पड़ता है सरकार को भी। अरे अगर एक शिव शक्ति को समाप्त किया तो कितना पाप के भागी हो जाते, पता है? बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए नौ दिन जो नव दुर्गे की पूजा करते हैं, ये नारी के नौ रूपों की पूजा है। शैल पुत्री से लेकर के पुत्री का जन्म शैल पुत्री होती है, फिर वो ब्रह्मचारिणी बनती है, फिर वो चंद्रघंटा बनती है, जब वो संपूर्ण खिल जाती है चंद्रघंटा के रूप में उसकी पूजा होती है। तो एक एक नारी का स्वरूप पूजन योग्य है, पूजन योग्य है। लेकिन ये बात घरों में भी किसी ने बताई ही नहीं, इसीलिए आज कन्याओं के प्रति कुदृष्टि पड़ती है और वो शिकार होती है कुदृष्टि का, बुराइयों का। न उसको वो स्वमान दिया गया। तो ये सब शिव की शक्तियां हैं। 51 पीठ की तो पूजा करेंगे, ये शक्तियों की पूजा करेंगे, और घर में जो शक्ति है उसकी उसको तिरस्कार करते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो देवों के भी देव, देवियों के भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं, जो शिव और शंकर को एक कर देते हैं। दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर दोनों का स्वरूप अलग है। एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष। दोनों का कर्तव्य अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, सदा कल्याण करने वाले सदा शिव, और शंकर के लिए कहते जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश, प्रलय हो जाता है। तो एक भोलेनाथ, एक प्रलयनाथ। जहां नाम अलग है, स्वरूप अलग है, कर्तव्य अलग है, तो एक कैसे हो सकता है? शंकर को पूरा गृहस्थ में दिखाया, मां पार्वती ये दो बच्चे हैं गणेश जी और कार्तिक, और सब मिलकर के शिव की पूजा करते हैं। ऐसे चित्र मिलते हैं ना भक्ति मार्ग में, पूरा परिवार बैठ के शिव की पूजा कर रहा है। तो क्या शंकर अपनी पूजा करेगा? शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया, किसका ध्यान कर रहा है? उनसे श्रेष्ठ कौन था? कैलाश पर्वत पर जाकर उसने ध्यान किया। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है। वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया? कैलाश का ध्यान किया। क्यों? तो शंकर के भी आराध्य कौन हुए? शिव थे। शंकर ने क्यों ध्यान किया? ताकि उसको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था, आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। तो इतने सालों ध्यान करके उस शक्ति को हासिल किया, तब जाकर के अपना कर्तव्य कर सके। तो शिव और शंकर एक नहीं है। शिव को कहा जाता त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो रचयिता है ना। अमरनाथ पर जब लोग जाते हैं तो वहां कहते हैं शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई, जिसके साक्षी वो दो कबूतर दिखाते हैं। अगर शंकर भी पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाते तो अमरनाथ और शंकर एक है या अलग हुआ? कथा अपनी थोड़ी सी उससे सुनाई जाती है, कथा तो हमेशा जो बड़े होते उनकी सुनाई जाती है। तो इसीलिए शिव और शंकर दोनों एक है या अलग है? अलग है। ये तो हुई भारत वालों की बात, है ना। ये अभी पता चला कि देवों के भी महादेव एक है, सभी देवी देवताओं के भी आराध्य वही है। ये हुई भारत वालों की बात कि भारत में उसको ज्योतिर्लिंगम के रूप में स्वीकार किया गया। क्या उसके साथ ये पांचों बातों की कसौटी लगती है? अगर उस बात को देखे तो इस्लाम धर्म में चले जाओ, जहां मूर्ति पूजा नहीं होती है। लेकिन मक्का में जब जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है, शिवलिंग आकार का ही, जिसके पीछे कहानी है। और कहानी ये है कि इस्लाम धर्म में मक्का में पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा मतभेद हुआ तो उस समय उनको वहां से मक्का से मदीना भेज दिया गया कि वहीं जाकर ये प्रचार करो, यहां नहीं। वहां चले गए, काफी इस बात का प्रचार किया अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब काफी मात्रा में लोग उस विचारधारा से जुड़े फिर मक्का आए, और उस समय काफी मतभेद लड़ाई झगड़ा हुआ, तब कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पवित्र पत्थर गिरा था जिसको मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपने हाथों से मक्का में स्थापित किया। और तब से लेकर के ये मान्यता हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तब तक जीवन सफल नहीं हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकता, हज में जाने के नियम बहुत कड़े, लेकिन जो हज में जाता है वो क्या करता है वहां जाने के बाद? अपने पापों का प्रायश्चित करता है। एक पिल्लर है जिसको वो शैतान कहते हैं, उस शैतान को पत्थर मारते हैं। उसके बाद मक्का के वो पवित्र पत्थर की 7 बार परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है, और कोई मस्जिद में नहीं होती है। और फिर अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है, और वो लाइन है हे परवरदिगार, परमेश्वर को कहा हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। परवरदिगार परमेश्वर को कहा नूरे इलाही, माना अल्लाह नूर है। नूर का मतलब तेज प्रकाश, ज्योति का मतलब तेज प्रकाश। जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा इन्होंने नूर कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में, जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। इसीलिए आज अगर वेटिकन में चले जाओ, जो क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, उस वेटिकन के अंदर किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं है। आप चाहे गूगल सर्च कर लो वेटिकन करके, और अंदर जो प्रतिमा है लाइट का ही सिंबल मिलेगा। जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए गुरु नानक देव ने कहा एक नूर, एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत अजोनी, कितनी सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है ईश्वर की, वही सच्चा पातशाह है। ये कहा अजोनी, जो किसी योनियों में नहीं आते हैं, वो निराकार है। इतनी स्पष्ट महिमा और किसी ने नहीं किया जितने गुरु नानक देव ने किया। तभी तो कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे बढ़े, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था जिसका ध्यान ये 24 तीर्थंकरों ने किया? तो कहा जाता है कि ये सभी ने ध्यान किया सिद्ध शिलापति का। सिद्ध शिला कौन है? तो कहा जो सदा श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, जो निराकार है। नौकार मंत्र जब कहते तो निराकार है, वही तो परमेश्वर का दिव्य स्वरूप है। महावीर स्वामी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, वो भी ध्यान मुद्रा में। और आगे जाए महात्मा बुद्ध ने कभी कोई मूर्ति पूजा नहीं की, न कराई किसी से, लेकिन वो भी ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? आज भी जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है चिंकोन शेकी। चिंकोन शेकी का मतलब है जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है, जो शांति का दाता है। और आगे जाए पारसी धर्म में, तो पारसी धर्म में अखंड ज्योति की लाइट, अखंड ज्योति स्वरूप कहा जाता। पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्व धर्म मान्य कौन है? एक ही तो है, जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, हरि कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक। जब सबने, देवी देवताओं ने उसको अपना आराध्य माना, सभी धर्म वालों ने उसको उसके तरफ इशारा किया और उसका स्वरूप स्पष्ट बताया, जब आज की दुनिया के कई महान आत्माओं ने, साईं बाबा जैसे महान आत्माओं ने कहा वो मालिक है, उसको याद करो, तो हम इनके मंदिर क्यों मना रहे हैं? उन्होंने जो रास्ता बताया उस पर चले ना। देवी देवताओं ने जिसकी पूजा की, हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं। साईं बाबा ने कहा उसको याद करो, हम साईं बाबा को याद करने लगे, तो हम रास्ता भूले कहां से? जब रास्ता ही भटक गए तो प्राप्ति ही नहीं है। इसलिए मनुष्य आज इतना भगवान को याद करते हैं, फिर क्या कहते हैं, हमारी प्रार्थना तो जैसे भगवान सुनता ही नहीं है। दुख में याद करते हैं ना, सुनता है, जब उसको कहते ही नहीं है, कहते ही दूसरे को है, तो फिर कैसे वो सुनेगा? उस माता पिता को तो याद किया ही नहीं, याद किया उनके बच्चों को, और बच्चे तो सुनते ही नहीं है। बच्चे सुनते हैं घर में? आपके बच्चे सुनते हैं? जब बच्चे सुनते ही नहीं है, आप कितना भी बच्चों को कहो, माता पिता को कहो, तो कम से कम जो चाहिए वो मिलेगा तो सही। तो पहली कसौटी सर्व धर्म मान्य है ना। आज आपको कोई चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, आपका स्वरूप तो एक ही रहेगा या हर बार बदली हो जाएगा? एक ही रहेगा ना। तो ईश्वर को किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, स्वरूप तो एक ही है या बदली हो जाएगा? एक ही रहेगा ना। तो सर्व धर्म मान्य पहली कसौटी। दूसरा सर्वोच्च शक्ति, इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभू। शंभू का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं अवतरित होता है, जिसके कोई माता पिता नहीं है, जो रेडी बॉडी में अवतरित हो, वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होता है। किसी माँ के गर्भ से ही संसार में नहीं आता है। अगर किसी माँ के गर्भ से आए तो जन्म लेना पड़े, जन्म ले तो मृत्यु भी आएगी। जिसने जन्म लिया मृत्यु तो आएगी। जबकि भगवान अजन्मा अकाल मूरत है, तो न जन्म लेता है न मृत्यु है। इसीलिए शिव का अवतरण दिखाते हैं, अवतरित होते अधर्म के समय पर, अवतरित होकर के अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना, जिसका यादगार भारत में शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती कहते हैं ना, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ये 24 घंटे के दिन और रात में नहीं आते हैं, जब सारे संसार में अज्ञानता का अंधकार फैल जाता, ऐसे समय पर परमात्मा अवतरित होते हैं। इसी के यादगार में हमने महाशिवरात्रि मनाया, महाशिवरात्रि कहा, है ना? उसको शंकर रात्रि नहीं कहा, शिवरात्रि कहा, है ना? लोग जब मंत्र देते ओम नमः शिवाय का मंत्र देते, उसको ओम नमः शंकराय नहीं जपते। अगर एक है तो जपना चाहिए, नहीं जपते है ना, क्योंकि वो अलग है। तो महाशिवरात्रि वो परमात्मा के दिव्य अवतरण का यादगार है। तो शिव शंभु सर्वश्रेष्ठ हस्ती, सुप्रीम अथॉरिटी। तीसरा, वो सबसे परे हैं, न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है। परमात्मा अवतरित होते हैं, उसको अपना देह नहीं है, तो न अपने कोई देह के संबंध है। जब अपना देह ही नहीं, तो न कर्म किया न फल भोगा, अकर्ता भोक्ता। और कर्म जब किया ही नहीं, ना वो पाप है ना पुण्य है, ना सुख है ना दुख है उसके फल स्वरूप। तो सभी चक्रों से पर है परमात्मा, परमात्मा माना जो सभी चक्रों से पर है। चौथी बात, पर होते हुए भी सर्वज्ञ है। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है। तीन लकीर माना जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। वो तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, यानी मनुष्य आत्मा को ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाला त्रिनेत्री है। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, त्रिदेव है। तो ये तीन की महिमा भी उसी के साथ लगती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। और इसलिए ये तीन मूर्तियों का गायन भी हर धर्म में मिलेगा। उनका भी जन्म नहीं दिखाया, उनकी उत्पत्ति दिखाई। शिव का अवतरण है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है। अच्छा, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? प्रकाश से हुई, लाइट से हुई, ओम से हुई, ओमकार से हुई। ओमकारेश्वर कौन है? शिव। शिव ने उत्पन्न किया, इसलिए इनके जन्म नहीं दिखाते हैं, है ना? दिखाते हैं ब्रह्मा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो कहा विष्णु के नाभि कमल से। अच्छा, विष्णु की उत्पत्ति कहां से हुई, तो ब्रह्मा के नाभि कमल से। अब कौन पहले आया? वो ऐसा ही हो गया जैसे अंडा या मुर्गी, कौन पहले आया, है ना? यानी ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये वन आफ्टर दी अदर। एक चित्र हमने देखा था के नेहरू की नाभि से शास्त्री जी निकले, शास्त्री की नाभि से इंदिरा जी निकले, और इंदिरा जी की नाभि से भावार्थ, वन आफ्टर दी अदर। ठीक इसी तरह ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये गायन है। तो तीनों की उत्पत्ति है, इनका अवतरण नहीं कहा जाता है, इसलिए इनका गायन हर धर्म में। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, तो इस्लाम धर्म में जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील कहते हैं। जिब्राइल माना जो सबक देने वाला, ज्ञान देने वाला। मिकाइल माना जो रोजी रोटी देने वाला, पालना करने वाला। और इसराफील माना जो कयामत लाने वाला, विनाश लाने वाला। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील। उसी को ही क्रिश्चियन धर्म में कहा द थ्री होली एंजल्स या थ्री होली गोस्ट, जिसको कहा जीओडी, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। उसी को ही गुरु नानक देव ने कहा एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। हर धर्म में आप देखेंगे ये तीन मूर्तियों का गायन है। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की सृजन का कार्य, विष्णु द्वारा उस नई सृष्टि की पालना का कार्य, और शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का महाविनाश का कार्य। करण करावन हार कौन है? परमात्मा है, खुद नहीं करता है, नहीं तो कर्म बंधन बने, कराता है। ब्रह्मा द्वारा सृजन का कार्य, विष्णु द्वारा पालना का कार्य, और शंकर द्वारा महाविनाश का कार्य, कराने वाला परमात्मा है ना। और पांचवी बात, सर्व गुणों में अनंत है, सर्व शक्तिमान है। तो परमात्मा के साथ ये पांचों बातें कसौटी के रूप में लगती है। अब तो अगर आपके घर में आपका बच्चा या आपका पोता आपसे पूछे ये सभी भगवानों का हेड कौन, तो बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? बता सकेंगे हाँ? तो ज्ञान सूर्य प्रकटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञानता का अंधकार मिटा या नहीं मिटा? मिटा हाँ? अब शाखाओं को नहीं पकड़ो, बीज को पकड़ो। बीज को पकड़ेंगे तो प्राप्ति होगी, शक्ति होगी। शाखाओं को पकड़ेंगे, टाल टालियों को पकड़ेंगे, पत्तों को पकड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आज तक इतनी पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद भी मनुष्य की शिकायत रहती है, भगवान में मन लगता नहीं है, क्योंकि मालूम ही नहीं कहां लगाना है। अब तो लगेगा या नहीं लगेगा? अब तो मालूम पड़ा तो लगेगा या नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए परमात्मा को याद करते हैं, उस दिव्य स्वरूप में अपने मन को एकाग्र करेंगे। खुद को भी आत्मा समझ करके उस परमात्मा को याद करो। मांगना कुछ नहीं, बाहर खड़े होकर सूर्य से मांगते नहीं है कि हे सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे। खड़े रहो, मिलेगी। कांटेक्ट में आओ, मिलेगी। समुद्र के पास खड़े रहकर समुद्र से मांगते नहीं है तेरी शीतल हवा मुझे दे, मिलेगी। कांटेक्ट में आओ, मिलेगी। परमात्मा से भी मांगने की जरूरत नहीं। जैसे ही उस परमात्मा में मन को एकाग्र करेंगे तो अपने आप शक्ति प्राप्त होने लगेगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर के लिए परमात्मा को याद करते हैं।